Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत पांचवें अध्याय में द्वितीय मंत्र की व्याख्या है।
येनामृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविदियः तेनेषितं कर्म विवर्ततेह प्रत्यव्यतेजो निलखानि चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयास् तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्याम् त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरम्भकर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयद्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सत्तत्वन्यः।
सगुण निराकार परमात्मा के बारे में विचार चल रहा है। जो चिंतनीय परमात्मा है, जिसके बारे में विचार करना है, जिसके बारे में चिंतन करना है और जिसके चिंतन का फल तद्रूपता की प्राप्ति है, क्योंकि उपनिषद का लक्ष्य है ब्रह्मचिंतन का फल ब्रह्म रूपता की प्राप्ति है। भगवत चिंतन का फल जीव रूपता ही बनी रहे, ये भगवत चिंतन का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। वेदांत उपनिषद का यह लक्ष्य रहा है कि तुम उस वस्तु का चिंतन करो जिसके चिंतन होने के बाद तुम्हारा जो वर्तमान रूप है वह बाधित हो जाता है। क्योंकि हम वर्तमान रूप से संतुष्ट नहीं है, इस असंतुष्टि का कारण रूप वर्तमान रूप को क्षय करने का एक ही उपाय है। वो उपाय है उसका चिंतन करो, जिसके चिंतन से तद्रूपता की प्राप्ति हो। ये उपनिषद प्रमाण है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मरूप ही हो जाता है, उससे भिन्न उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, स्वरूप नहीं रहता। तो ये उपनिषद के मंत्र परमात्मा के चिंतन की बात करते हैं। जगत के बारे में चिंता होती है, परमात्मा के बारे में चिंतन होता है। चिंता शोक और मोह का कारण बन जाता है, चिंतन भक्ति और योग का कारण बन जाता है। योग शोक वियोग का कारण बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कह दिया है। दुख संयोग वियोग योग उच्यते। जो तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई है, उस प्राप्त दुख का निवारण करना ही योग है, दुख संयोग का वियोग। इसलिए योग शोक का निवारक है, निवर्तक है। कैसा है उस परमात्मा की महिमा? येनामृतम नित्यम इदम हि सर्वम, येन स्वसत्तया, जिसके द्वारा अपनी सत्ता से ये सारा का सारा जगत आवृत हुआ हुआ है। येनावृतम नित्यम, नित्यमावृतम येन, जिसके द्वारा यह विश्व प्रपंच अनंत कोटि ब्रह्मांड नित्य आवृत हुआ हुआ है। आवृत्ति का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि उसके अंदर कुछ और है और वो कुछ और है। इस बात को शुक्ल यजुर्वेदीय मंदंदिनी शाखा अंतर्गत की उपनिषद ईशावास्य उपनिषद भी यही कहते हैं। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिनी शाखा और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं से कोई विरोध नहीं है। जिस ईश्वर के द्वारा ये सब जगत व्याप्त हुआ है, आच्छादित हुआ है, ईशावास्य मिदम सर्वम एत किंच जगत्याम, प्रत्यक्ष और परोक्ष जो कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म जगत अस्तित्व में है, वो सब के सब उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, व्याप्त है। तेन त्यक्तेन मुञ्जिता। तब इतना ख्याल रखो कि ये सारे के सारे पदार्थ परमात्मा के द्वारा व्याप्त होने के कारण ये भोग के लिए, त्याग भाव से भोग के लिए है, राग भाव से भोगने के लिए नहीं है। भोग तो आप भी भोगते हो और हम भी भोगते हैं। प्रारब्ध भोग तो संसारी भी भोगता है और ज्ञानी भी भोगता है। तो ये नहीं समझ लेना कि ज्ञानी हो जाने के बाद उसको प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अज्ञानी रागतः संसार के पदार्थों को भोगता है, त्यागना तो जानता ही नहीं है, छोड़ना तो जानता ही नहीं, पकड़ता ही रहता है बंदर की तरह, इसलिए वह दुखी होता है। क्योंकि हर विषय हर भोग्य पदार्थ में उसका राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। क्योंकि महात्मा लोग इन पदार्थों में राग नहीं करते हैं, आसक्ति नहीं करते हैं। जिस प्रारब्ध से आज बढ़िया वस्तु प्राप्त हुआ है, यदि वही प्रारब्ध होगी तो कल भी वो प्रारब्ध दिलाएगा। हम जब कभी कहीं से कहीं जाते हैं, प्रवचन करते हैं महीनों और उसके बाद फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारे शुभचिंतक माताएं जो अभिभावक बनकर रहती हैं, शुभचिंतक हैं, बहुत चीज लेकर आ जाते हैं, खाने की चीज, कोई कुछ लेकर आएगा, कोई कुछ लेकर आएगा, कोई कुछ लेकर आएगा, और बार बार जाने के समय में पूछ पूछ करती है कि महाराज थोड़ा फरसान ले जाओगे, थोड़ा नमकीन ले जाओगे, थोड़ा ये ले जाओगे, थोड़ा खाखरा ले जाओगे, थोड़ा गाठिया ले जाओगे। पूछते हैं, हमने कहा ये सब क्या करेंगे भाई? बोले आप वहां जा रहे हो, वहां खाने को मिल जाएगा, वहां खाने को काम आएगा। तो हमने कहा कि जब यहां आए थे तो कुछ लेकर तो आए नहीं थे, जब यहां आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए, यहां हमारा प्रारब्ध सब व्यवस्था करता है, किया है उसने, तो फिर वहां जाएंगे तो क्यों लेकर जाएंगे? वहीं वो प्रारब्ध होगा तो वहीं व्यवस्था करेगा। इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है अपनी प्रारब्ध पर, और इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है कि परमात्मा की व्यवस्था पर। जो परमात्मा और प्रारब्ध मिलकर यहां व्यवस्था कर रहे हैं, इन गांठियों का, नमकीन का, भजियों का, परौंठे का, अरे वही प्रारब्ध और वही परमात्मा, हम यहां छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। प्रारब्ध यहां छोड़कर जाते होते तो फिर आप ये कहते, महाराज जिस प्रारब्ध ने यहां व्यवस्था की है वो प्रारब्ध आप यहां छोड़कर जा रहे हो, फिर दूसरी जगह व्यवस्था हो सके न करे वो प्रारब्ध न होने के कारण, तो फिर ये सब लेके जाओ। तो हम कहते हैं कि हम अपना प्रारब्ध यहां छोड़कर जाने वाले नहीं है। कोई भी नहीं छोड़ सकता है अपने प्रारब्धों को, कहीं भी जाओ कहीं छोड़ नहीं सकता है। प्रारब्ध तो छाया की तरह चलती रहती है तुम्हारे साथ, और केवल प्रारब्ध तुम्हारे साथ चलती रहती है बात नहीं है, परमात्मा भी तुम्हारे साथ साथ ही चलता रहता है। तुम अपने प्रारब्ध अनुसार तुम जहां भी जाओगे परमात्मा तुम्हारे साथ साथ ही चलता है, यही तो उसकी परमात्मा की परमात्मा पना है। ऐसा नहीं कि तुम कष्ट में फंस गए और परमात्मा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, ये अब दुखी हो गया अब इसके साथ रहना नहीं है, क्योंकि इसके साथ रहेंगे तो अब हमको भी दुखी करेगा, ऐसा नहीं है बाबा। ये तो जीवात्माओं की भावना है, परमात्मा ऐसा नहीं करता है। परमात्मा की तो उत्क्रामंतम स्थितम वापी गुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपस्यन्ति। हे अर्जुन, जीवात्मा जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के सहित निकलता है तो मैं भी उसके साथ साथ ही निकलता हूं। जब अपने प्रारब्ध आदि के चलते देहांतर को प्राप्त करता है, उस शरीर में घुसता है, तो हे अर्जुन मैं भी उसी के साथ ही घुसता हूं, और तत्त्व शरीर में रहकर शुभाशुभ कर्म फलों को सुख और दुख के रूप में जब वो भोगता है, तो हे अर्जुन उस समय भी मैं उसी के साथ रहता हूं, लेकिन वो भोगता है मैं देखता हूं, वो भोग कर भी अतृप्त होता है मैं देखकर ही तृप्त हूं, क्योंकि तृप्ति मेरा स्वरूप है। जीवात्मा तो जितना भी मिले कभी तृप्त हो नहीं सकता है, वो उसको तो सारा विश्व ब्रह्मांड का मालिक बना दो तो भी वो तृप्त नहीं होगा। तृष्णावधि को गतः, ये तृष्णा तो ऐसी चीज है कि एक प्राप्त होने के बाद दस की कल्पना करती है, दस प्राप्त हो गया तो सौ की कल्पना करती है, सौ प्राप्त हो गया तो हजार की प्राप्त कल्पना करती है, हजार प्राप्त हो गया लाखों की कल्पना, लाख तो करोड़ों करोड़ों के, अरब अरबों के खरब, कोई सीमा है क्या ये तृष्णा की जो है बढ़ने की? ये तो कोई सीमा ही नहीं है। अनंत अनंत है, तृष्णावधि को गतः। इसके अवधि को सीमित करने का एक ही उपाय है वो, यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरम। संतोष ये तुम्हारे उस तृष्णा को शिथिल करने का एकमात्र उपाय है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, महर्षि पतंजलि बोलते हैं सूत्र में, योग सूत्र में, संसार में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसने धन को सुख की आशा से संग्रह किया था, उसी तरह संतोष को अपने जीवन में धारण कर लेता है। हम धन क्यों संग्रह करना चाहते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारी बुद्धि यही है कि संपदा, इन संपत्ति से, वैभव से हम सुख अनुभव करेंगे, और उसी के लिए रात दिन प्रयत्न करते हुए संग्रह करते रहते हैं। लेकिन ये सब अभिवृद्ध संपदा अभिवृद्ध होने पर भी, बढ़ने पर भी, जिस सुख की हम अपेक्षा करते थे वो सुख तो मिल नहीं रहा है। सुविधा मिल रही है, सुविधा हो रही है, लेकिन सुख उन सुविधाओं में भी दुख यथावत ही है। तब फिर ऋषियों ने कहा है कि सुख इन वस्तुओं के द्वारा होने वाली नहीं है। तुम यदि सुविधा को ही सुख मानते हो तो ये तुम्हारी भ्रांति है। सुख अलग चीज है, सुविधा अलग चीज, सुविधा एक वैकल्पिक व्यवस्था है। पैदल चलते थे, साइकिल ले ली, साइकिल चलते थे, स्कूटर ले ली, स्कूटर से चलते थे, कार ले ली, स्वयं ड्राइव करते थे, ड्राइवर रख ली, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन ये सुख नहीं है। सुखी तो पैदल चलने वाला भी अंदर से सुखी रहता है। तब सुख होने के लिए क्या चाहिए, तो शास्त्र सर्वत्र ऋषियों ने अपने अनुभव से कहा है, सुखी होने के लिए संतोष चाहिए। जिस साधन से तुम सुखी होते हो उस पर तो तुम्हारी दृष्टि गई नहीं है, उसको तो जीवन में धारण किया नहीं, उसको तो आने ही नहीं दिया शरीर में, जीवन में, और खाली असंतोष को जीवन में धारण करके और सुविधा के साधनों के पीछे पड़े हो तो कहां से सुख होने वाला है, नहीं होगा। इसलिए हमने एक कहानी पढ़ी थी, त्याग और वैराग्य और संतोष के लिए ये सारी कहानियां उपयुक्त हैं समझने के लिए। कभी कभी आपके जीवन में एक काम आ सकता है, आ जाए तो आपका हित ही होगा। हमने कहानी पढ़ी थी कि कोई एक व्यक्ति था, उसके बहुत ताकतवर व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था, सत्ता वाला व्यक्ति था, और उसने कल्पना की कि मैं इस शक्ति का प्रयोग करके सारे विश्व को जीत लूं। उसकी कल्पना ही तो है, सारे विश्व को जीत लूं तो सब विश्व मेरे अधीन होगा, बड़ा आनंद आएगा, कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, कोई मेरा प्रतिपक्षी नहीं रहेगा, कोई विरोधी नहीं रहेगा। तो उसने अपनी सेना को तैयारी किया विश्व जीतने के लिए, निकल पड़ने पड़ गया। तो कहते हैं कि उसकी एक विधवा मां थी, बाप तो था नहीं, उसके पास गए आशीर्वाद मांगने, जाना ही चाहिए, पुत्र है तो मां से आशीर्वाद तो मांगना ही चाहिए। लेकिन मां का आशीर्वाद भी तभी फलीभूत होगा जब अन्य माताओं के जो संतति पुत्र हैं उनका तुम हित के लिए कर्म करोगे। आशीर्वाद मांगने तो गया था दुर्योधन भी, गांधारी के पास गया था ना, महाभारत में यही कहा लिखा है। महाभारत युद्ध शुरू करने से पहले शाम के समय, कल से युद्ध शुरू होना है, और शाम को मां गांधारी के पास आशीर्वाद मांगने गया, मां मुझे आशीर्वाद दो, क्या चाहता है बेटा, बोले कल से युद्ध आरंभ हो रहा है और कल युद्ध होगा, शुरू हो जाएगा कल से, पांडव और हमारे बीच में युद्ध होगा और युद्ध हमेशा जीवन और मृत्यु का पक्ष लेती है, या तो मृत्यु को सब वरण करना पड़ता है या फिर विजयता को और जीवन को। मुझे और तो कोई चिंता नहीं है, एक ही चिंता मुझे सता रही है। क्या बेटा? भीम का जो गदा है उससे मुझे बहुत डर लगता है। प्रभु तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि भीम का गदा मुझे स्पर्श ही नहीं करे, असर ही न करे। उसको कैसे भाई, ये तो संभव नहीं है। बोले संभव है, हमको पता चल गया है वो संभव है। कैसे बेटा? बोले युधिष्ठिर ने कहा है यदि तुम्हारी मां गांधारी, शादी के प्रथम क्षण से उसने आंख में जो पट्टी बांध रखी थी कपड़े की, क्योंकि पति यदि अंधा है तो मैं देखकर क्या करूंगी, उसने आंख में पट्टी बांध ली थी, दृष्टि संयम का इतना शक्ति संचय हुआ है गांधारी में, हम लोग तो नक्कामा दृष्टि की शक्ति को क्षय करते जाते हैं। काम फुर्सत हो गया तो टीवी खोलकर बैठ गया और दृष्टि की शक्ति को, ऊर्जा को क्षय करते जाते हैं। ये गांधारी के पट्टी बांधने के प्रसंग से हमें सीखना चाहिए। हर इंद्रियों के संयम का कितना बड़ा फल होता है, कितनी ताकत संचित होता है। कम बोलोगे तो आपके वाक संयम होगा, वाक संयम होगा तो वाणी की ऊर्जा संचित होगी। कम देखोगे तो आपके नेत्र संचित होगे, नेत्र के देखने की शक्ति संचित होगी। तो युधिष्ठिर को यह रहस्य पता था, तो युधिष्ठिर ने कह दिया जाओ यदि तुम्हारी मां तुम्हारे बिल्कुल दिगंबर नग्न शरीर में वो अपनी आंख की पट्टी खोलकर पूरे शरीर को देख देगी तो जहां जहां तुम्हारी मां का दृष्टि पड़ेगा वो सब का सब शरीर वज्र का हो जाएगा। ये दृष्टि की शक्ति की बात है। और युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए तो सत्यवादी हैं। आप तो पुरुष हैं युधिष्ठिर। भले ही युधिष्ठिर मेरे शत्रु के रूप में कल से युद्ध में रहेंगे, लेकिन युधिष्ठिर की सत्यवादिता के प्रति मेरी आज भी शंका नहीं है। कौन बोल रहा है? दुर्योधन अपनी मां से। इसलिए मां कृपा करो, आशीर्वाद दो, आग की पट्टी खोल लो। गांधारी ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा है तो ठीक ही कहा है, गलत नहीं कह सकते। तब बेटा तुम तैयार हो मेरे आशीर्वाद को लेने के लिए? बोले हां मां बिल्कुल तैयार हो। शरीर में कोई वस्त्र तो नहीं है? बोले नहीं मां कोई वस्त्र नहीं है। चल तू आशीर्वाद मांगता है तो ठीक है। दुर्योधन किसके लिए आशीर्वाद मांग रहा है? संहार करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए। अब ये आशीर्वाद फलीभूत होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और बेटा है, मां का आशीर्वाद फलीभूत होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसने जब कहा कि मेरे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है तो गांधारी ने अपने आंख की पट्टी खोल ली। खोलकर जब दुर्योधन को देखा शरीर में, तो कमर के नीचे उसने केले के पत्ते लपेट रखी थी। वो तो आप लोगों को कई बार सुनाया है ना महात्माओं ने, ये तो कृष्ण की बदमाशी थी वहां। ये सारे बदमाशी करते हुए भी परमात्मा होके रह गया, वही तो परमात्मा की विशेषता है। सारी खुरापात करके भी वो परमात्मा का परमात्मा ही रहा, ये तो उसकी क्षमता है, उसकी चमत्कारी है। अब गांधारी ने कहा कि ये क्यों लपेट रखा है कमर के नीचे? हमने पहले ही पूछा था। बोले कपड़ा तो है ही नहीं, तुमने तो कपड़ा के बारे में पूछा था, हमने तो कपड़ा नहीं है कहा, ये तो कपड़ा है ही नहीं। अरे मूर्ख ये किसने बांधने के लिए कहा? बोले एक रास्ते में मिला था, उसने कह दिया, मां के सामने निर्वस्त्र जाओ। तो हम निर्वस्त्र ही निकले थे घर से तो तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन बीच में वो मिल गया, उसने कहा कि भाई निर्वस्त्र की बात है, निरावरण की बात नहीं है, और तुम इतने बड़े राजकुमार हो और इतने बड़े हो गए, कोई दूध मुहे बच्चे तो है ही नहीं हो कि मां के सामने नंगे जाना। तुम्हारी शादी हुई है, बीवी है, बच्चे हैं, और इतने बड़े हो जाने के बाद भी तुम मां के सामने नंगे जाओ? कृष्ण तो सेम सेम कह दिया वहां तो अर्जुन दुर्योधन को। फिर क्या करे? बोले इज्जत रखो भाई मां के सामने, और शरीर निर्वस्त्र हो तो हो, कम से कम अंग तो ढको, गुप्त अंग को तो ढको भाई, ये हद होता है। वस्त्र नहीं पहनना, केले के, केला तो वस्त्र है ही नहीं, केले के पत्ते को लपेट लो, मां का मान भी रहेगा, तुम्हारी भी इज्जत रहेगी, सब ठीक ठाक रहेगा, आशीर्वाद हो ही जाएगा। अरे बात तुमको पता तो है ही है कि गधा का जब युद्ध होता है तो कमर के नीचे तो गधा प्रहार होती ही नहीं है, तुम उसकी भी चिंता नहीं करना। ओके, तो गांधारी ने कहा कि बेटा तुम्हारी मृत्यु सुरक्षित बच गई है, यदि यह भी लपेट कर नहीं आते तो फिर तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर वज्र होता। देख लो जितना नंगा है वो सब वज्र हो गया है, और जितना आवरण है वो कच्चा रह गया है, और यही तुम्हारी मृत्यु का संभावना सुरक्षित है। तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे इस मेरे आशीर्वाद से, वो लक्ष्य तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि ये विघ्न आ गया, ये विरोध आ गया, प्रतिबंधक आ गया ये।